अब हम बहुत अहम मौजू पढ़ने लगे हैं, और मैं आपको भी सी बता दूं कि आपको बहुत सारी चीजें नहीं लगेंगी। हमारे नमाज के कपड़े, ठीक है? तो नमाजी का लिबास क्या है? बाज़ लोग कहते हैं कि औरत और मर्द की नमाज में फर्क है। जी बहुत फर्क है। किस चीज का फर्क है? लिबास का फर्क है। आइए पढ़ते हैं इसको, पहले बुक में से पूरा पढ़ूंगी, फिर इंशाल्लाह आपको गो थ्रू कराऊंगी, क्योंकि बुक का अल्टरनेट कभी भी कुछ और नहीं हो सकता। तो देखते हैं कि नमाजी का लिबास कैसा होना चाहिए। नमाजी का लिबास, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युसल्ली अहदुकुम फि थौबिल वाहिदी लैसा अला आतिकैही शैयुन। तुम में से कोई एक कपड़े में इस तरह नमाज ना पढ़े कि इसके कंधे नंगे हों, यानी शोल्डर शुड बी कवर्ड ड्यूरिंग द सलात। इससे मालूम हुआ कि मर्द के लिए नमाज के दौरान में सर ढांपना वाजिब नहीं। अगर ऐसा होता तो आप कंधों के साथ सर का जिक्र भी फरमाते। यानी हमारे कल्चर में एक बड़ा मारूफ मसला है कि मर्द टोपी पहने और उसके बगैर नमाज नहीं होती। पहन ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन टोपी नहीं है, मिल नहीं रही, और वो बच्चा ही पहन के कहीं भाग गया। अब आखिरी वक्त में नमाज पे जा रहे हैं, टोपी टोपी हो रहा है, वो बेबी खेल रहा है उसके साथ, चले जाइए, नमाज हो जाएगी आपकी, इससे मुराजी, ठीक है? सर ढांपने के बारे में मजमू लिहाज से लोगों को इसकी तरगीब देना दुरुस्त है, मगर नमाज के साथ मखसूस कर लेना, यानी तख़सीस करके सर ना ढांपने पर मलामत करना ठीक नहीं। ताहम बेहतर यही है कि नमाज के दौरान सर पर टोपी या अमामा वगैरह हो। और इसकी दलील बारुल खुदा किताब है, मोहम्मद बिन खल्फ बिन इब्राहियान की, पहली जिल्द 202 नंबर पेज। हजरत उमर बिन अबू सलमा रदी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा के घर में एक ही कपड़े में लिपटे हुए नमाज पढ़ते देखा। उस वक्त आपने इनकी दोनों तरफें अपने कंधों पर रखी हुई थी, यानी शोल्डर्स शुड बी कवर्ड। इससे भी यही पता चलता है, सहाबे कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते थे, और अपने तहबंद छोटे होने के सबब अपनी गर्दनों पर बांधे हुए होते थे। और औरतों से कह दिया गया था, जब तक मर्द सीधे होकर बैठ ना जाएं, उस वक्त तक तुम अपने सर सजदे से ना उठाना। जी बुखारी की रिवायत है 362। क्या पता चला कि उस वक्त कपड़ों की इतनी कमी थी कि सतर खुलने का डर था। यह हुक्म इसलिए दिया गया था कि अगली सफ वालों के मुकामे सतर पर पिछली सफ वालों की नजर ना पड़े। याद रहे कि अहदे नबूवत में खवातीन पिछली सफों में नमाज अदा करती थी, बीच में कोई बैरियर भी नहीं होता था, कमरा कोई लेडीज प्रेइंग रूम के नाम पे नहीं था। मोहम्मद बिन मुनकदिर रहमहुल्ला बयान करते हैं कि जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हुमा के पास मैं आया तो वो एक ही कपड़े में लिपटे हुए नमाज पढ़ रहे थे, और इनकी चादर एक तरफ रखी हुई थी। जब वो नमाज से फारिग हुए तो हमने इनसे कहा, अबू अब्दुल्ला, आपकी चादर पड़ी रहती है और आप नमाज पढ़ लेते हैं? तो उन्होंने फरमाया, हाँ, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह नमाज पढ़ते हुए देखा है, और मैंने चाहा कि मैं ऐसा ही करूं ताकि तुम्हारे जैसे जाहिल मुझे इस तरह नमाज पढ़ते हुए देख लें। यानी उन्होंने जाहिल इनको उस रंग में नहीं कहा कि बुरा कहना, मुराद ये था कि जिनको इल्म नहीं है वो भी इस तरह करता मुझे देख लें। इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि वो यहूद की मुखालफत की खातिर नमाज में सदल करने को मकरूह समझते थे, और फरमाते थे कि यहूदी सदल करते हैं। हजरत अली ने कुछ लोगों को नमाज में सदल करते हुए देखा तो फरमाया, गोया ये यहूद हैं जो अपने इबादत खाने से बाहर आए हुए हैं। मालूम हुआ कि नमाज में यहूद की तरह गर्दन पर कपड़ा लटकाना, इसको सदल करना कहते हैं, ये जायज नहीं। सदल क्या है? सर या कंधों पर इस तरह कपड़ा डाला जाए कि वो दोनों तरफ लटकता रहे। अगर सर या गर्दन पर कपड़े को बल दे दिया, लपेट लिया जाए, फिर इसके दोनों किनारे लटकें, तो यह सदल नहीं। वल्लाहु आलम। क्या पता चला कि मर्दों को किसी भी तरह से कोई ऐसा लिबास नहीं पहनना था जिसमें उस दौर के जीव से मुशाबहत हो जाए। तो ये तो मर्दों की बात थी, थोड़ा सा औरतों के लिए भी सुन लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ औरतें नमाज फजर अदा करती थी तो अपनी चादरों में लिपटी हुई रहती थी, यानी बेपर्द होके नहीं आती थी कि मर्द औरतों की नमाज भी और बातें भी हो रही है, बेपर्दगी भी पूरी चादरों में होती थी। ये बुखारी की रिवायत है 372 और मुस्लिम 645 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बालिगा औरत की नमाज ओढ़नी के बगैर नहीं होती। नोट कीजिए, अब दुपट्टा तो निकल ही गया ना हमारे कल्चर से भी, तो वो दुपट्टे के बगैर यानी ओढ़नी के बगैर नमाज नहीं होती। एक हदीस में कि आपने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि रान यानी थाइस काबिले सतर होती हैं, यानी इसे छुपाना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नमाज में नंगे पांव खड़े होते और कभी आपने जूता पहन रखा होता था। आपने फरमाया, जब तुम नमाज अदा करो तो अपना जूता पहन लो या इसे उतार कर अपने कदमों के दरमियान रख लो, यानी दोनों कदमों के बिटवीन। उमरे पे हज पे अमूमन इसी तरह करना पड़ता है, क्योंकि ये साइड पे रखने से जगह भी नहीं होती और दूसरों की तकलीफ़ का भी वो जूता ज़रिया बन जाता है। एक रिवायत में कि आपने फरमाया कि यहूद की मुखालफत करो, वो जूते और मोज़े पहन कर नमाज अदा नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मस्जिद में आओ तो जूतों को अच्छी तरह गौर से देख लो, अगर इनमें गंदगी या नजासत नज़र आए तो इन्हें ज़मीन पर अच्छी तरह रगड़ो, फिर इनमें नमाज अदा करो। इस दौर में मस्जिदों के फर्श कच्चे होते थे और जूतों के तलवे भी आम तौर पर हमवार होते थे, जो ज़मीन पर रगड़ने से पाक हो जाते थे। आज अक्सर मस्जिदों में सफ़े हैं, दरियां हैं, कालीन हैं, यानी कारपेट होता है, और जूतों के तलवों में बसा औकात गंदगी फंस जाती है जो ज़मीन पर रगड़ने से नहीं निकलती। लिहाजा आज अगर कोई शख्स जूते पहनकर नमाज अदा करना चाहे तो इसे तहारत का मुकम्मल अहतमाम करना चाहिए, वरना जूते उतार कर नमाज पढ़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम नमाज अदा करो तो अपने जूते दाएं या बाएं ना रखो, बल्कि कदमों के दरमियान रखो, क्योंकि तुम्हारा बायां दूसरे नमाजी का दायां होगा। ऐसे ही है ना। हाँ, अगर बाएं जानिब कोई नमाजी ना हो तो बाएं जानिब रख सकते हो। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने अब्दुल्ला बिन हारिस को देखा कि वो पीछे से बालों का जूड़ा बांधकर नमाज पढ़ रहे थे। ये है वो टॉपिक जो अक्सर लोग सुनना चाहते हैं, तो जूड़े के बारे में भी बात हो गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास उठे और इनका जूड़ा खोल दिया। जब इब्ने हारिस नमाज से फारिग हो गए तो इब्ने अब्बास की तरफ मुतवज्जे हुए और पूछने लगे, तुम्हें मेरे सर से क्या सरोकार? अब आपको भी कोई नमाज के दौरान छेड़छूड़ करे तो गुस्सा तो आता ही है ना, कहेंगे तुम मेरे बालों के साथ क्या कर रहे थे? इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह को ये फरमाते हुए सुना है, बेशक इस तरह के आदमी की मिसाल इस शख्स की सी है जो मशके बंधी हुई हालत में नमाज अदा करे, यानी जिसको खूब बांध बूंद के नमाज में फेंक दिया है। हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक धारीदार चादर में नमाज पढ़ी, आपकी निगाह इसकी धारियों पर चली गई, यानी स्ट्रैप्स थी और उसमें ज़ाहिर इंसान की नज़र चली जाती है। जब फारिग हुए तो फरमाया, मेरी ये चादर अबू जहम के पास ले जाओ और इसकी सादा चादर मेरे पास ले आओ, और इस चादर की धारियों ने तो इस वक्त मुझे नमाज में खुशियों से गाफिल कर दिया था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने घर में एक जानिब एक पर्दा लटका रखा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे सामने से अपना ये पर्दा हटा दो, इसकी तस्वीरें नमाज में मुसलसल मेरे सामने आती हैं, यानी मेरी तवज्जो जाती है इस पे। असरे हाजिर, यानी आज का दौर, नाउ टू डेज, आम दिनों में, यानी आज के दौर में आम मुसलमान बड़ी अकीदत और दीनी जज्बे के साथ एक दूसरे से भड़कर, ज़रा सा ये भी काबिले गौर मसला है, नक्शो निगार वाले मुसल्ले का इंतखाब करते हैं। और हमारे यहाँ हज और उमरे से आने वाले का बेहतरीन तोहफा जो किसी को दे वो जाए नमाज है, और वहां से उठा के लाते हैं और बाद में खोल कर पीछे पड़े तो मेड इन पाकिस्तान और मेड इन इंडिया होता है, और इसे आदाब इबादत का हिस्सा समझते हैं। और घरों के अलावा अक्सर मसाजिद में भी खूबसूरत नक्शो निगार वाले मुसल्ले नजर आते हैं, बल्कि अब तो मस्जिदों में इसी किस्म के कालीन भी मरवज हो गए, यानी इनका रिवाज हो गया, इन हो गए, फैशन हो गया, मुराद जाए। ये सब खिलाफ सुन्नत और खिलाफ तकवा है। हम सबको चाहिए कि अपनी अकीदत और मोहब्बत, जज्बा शौक और ख्यालात और नज़रियात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा तालीमात और मुकद्दस फरमुदात, यानी आपकी सेइंग्स, आपके वर्ड्स, इसके मुताबिक बनाएं, क्योंकि आप ही की इतात में इतात इलाहिया, यानी अल्लाह की इतात, और मोहब्बत रब्बानिया, रब की मोहब्बत और कबूलियत इबादत मुजमिर है, यानी छुपी हुई है। सहाबे किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते हुए गर्मी की शिद्दत से बचने की खातिर सजदे की जगह पर कपड़े का किनारा बिछा लेते थे। तो ये तो अब अपने अहादीस पढ़ी, आइए ज़रा सा थोड़ा आपके साथ गो थ्रू कराती हूँ कि इसमें हमने क्या सीखा और किस तरह से समझ आई। पहली बात, इसमें जो हमने सीख ली, जो देख ली, वो क्या है? नमाजी का लिबास बहुत अहम है। लिबास में सिर्फ कपड़े ही नहीं होते, बाकी भी चीज़ें हैं। अब देखिए, ये जो हदीस हमने पढ़ी कि अल्लाह के नबी ने कहा कि खुले कंधों के साथ नमाज ना पढ़ो, इसकी आज के दौर में हमारे कल्चर के लिबास में क्या इम्प्लीमेंटेशन है, बस लोग बुनियान के साथ नमाज पढ़ते हैं, मर्द हजरात हैं, अगर बुनियान पूरी बाजू की हाफ यानी मीन शोल्डर्स कवर्ड है यानी ये पूरा हिस्सा कवर्ड है तो इट्स ओके, लेकिन सिर्फ अगर पतले से स्ट्रैप्स हैं तो कोशिश करना चाहिए कि उसमें कुछ पहन ले ऊपर, ठीक है। मर्दों की बात है इसलिए वो खुद ही जान लेंगे, हमारा इससे कोई इतना नहीं, लेकिन बहरहाल आप अपने बेटों को जब नमाज के लिए खड़ा करें तो टी शर्ट वगैरह यानी सही पूरी कवर्ड शोल्डर्स की होनी चाहिए। फिर दूसरी चीज़ देखिए कि हमने ये जो देखी कि एक ही कपड़े में नमाज पढ़ते थे और तहबंद छोटे होते थे और औरतों से कहा जाता था कि देखो सर बाद में सजदों से उठाना, क्या वो दौर था, और आज हम जरा अपने कपड़ों की अलमारियां तो देखें, क्या अल्लाह की रहमतें हैं, औरतें तो औरतें मर्द भी कम नहीं है माशाल्लाह, घर या स्टोर में लटके हुए कपड़ों में फर्क ही नहीं दिखता। तो उस वक्त भी यही सोचे, अपना एक मियार बनाइए, मुझे 6 जोड़े रखने हैं, सातवां आ गया एक दे दीजिए, आप एक फैंसी सा सूट रखा हुआ था कहीं आएंगे जाएंगे पहन लेंगे, कोई और मिल गया पिछला सदका कर दें, आप लोन के जोड़े पहनते हैं आपको एक नया लोन का जोड़ा मिल गया पिछला सदका कर दें, आपका घर कभी छोटा नहीं होगा, फिर आपको एक्सटेंशंस नहीं करवानी पड़ेंगी और बड़ी बड़ी अलमारियाँ नहीं बनवानी पड़ेंगी। फिर उसके बाद देखिए कि जो हमने मर्दों का सर ढांपने वाली जो बात की है इसमें शिद्दत नहीं बरतनी चाहिए, हमारे यहाँ अमूमन छोटी छोटी चीजें नमाज ही की बुनियाद बनाकर बड़े बड़े फिरके बन गए, लोग नमाज नहीं पढ़ते दूसरे की मस्जिद में, मस्जिद के बाहर लिखा हुआ फलां फिक्का के मुताबिक, और बाहर एक मस्जिद, मेरे पास पिक्चर अभी भी कहीं सेव होगी भेजी, मस्जिद के बाहर लिखा हुआ है, गांव की मस्जिद लग रही थी, दो तीन फिरकों के नाम लिखे थे कि इस फिरके के लोग अंदर आने की जरूरत ना करें, आप मुसलमान हैं, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम है आप, कैसी बद तहजीबी की बात है, अल्लाह तला हमारे दिल दूसरे मुसलमानों के लिए बड़े कर दे। फिर इसी तरह नमाज में सर ढांप लें, बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं ढांपता तो उसके पीछे नहीं पढ़ना, फिर औरतें भी पीछे नमाज पढ़ेंगी सेम जगह पे। अब घर में नमाज अगर पढ़ते हैं किसी ऐसे वक्त में जैसे लॉकडाउन था तो माशाल्लाह घर घर से इमाम उठे नमाजें पढ़ते थे, तो घरों में भी ऐसे ही करें, यानी इसी रूम में अगर इस घर वाले नमाज पढ़ें तो मर्द हजरात उस रूम में खड़े हो जाएं और औरतें यानी बेटियां माँ जो भी है वो इधर थोड़े डिस्टेंस से खड़े हों, बिल्कुल करीब नहीं, जितना रूम हो उसको यूज़ करें तो इंशाल्लाह वो फिर नमाज का खुशू भी बाकी रहेगा। फिर ये जो हमने देखा कि नमाजी एक कपड़े में नमाज पढ़ रहे थे और बाद में उन्होंने कहा कि मैं इन्हें इस तरह अल्लाह के नबी को देखा है, तो ये सहाबा की एक खूबसूरती थी कि अगर उनको खुद कोई अच्छी बात पता होती थी तो अपने दूसरे भाई को भी ज़रूर बताते थे। फिर सदल को हमने देख लिया था यानी कंधों पर इस तरह कपड़ा डाला जाए कि लटकता रहे, जैसे आप देखिए गले में दुपट्टा खातून डालती हैं अमूमन तो वो रस्सी सी बना के ऐसे डाल के पीछे की तरफ दौड़ सिरे होते हैं ना, इस तरह डाल के नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, अच्छा भी नहीं लगता, बड़ा मायूब सा अंदाज है, लेकिन ज्यूज उस दौर में ये करते थे, इससे क्या पता चलता, इतनी सी चीज में अल्लाह के नबी ज्यूज की मुमासलत सिमिलर होना या उनसे सिमिलेट होना पसंद नहीं कर सके तो कहाँ फिर बाकी लाइफस्टाइल और दूसरी चीजों में देखा जाए। और ये सब रिवायत के रेफरेंसेस लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद खवातीन जो आप और मैं असल में हमारी बात है, पहली बात देखिए कि चादर सर पे डालती थी पाँव तक छुपती थी, ऐसी चादर को अरबी में जिलबाब कहते हैं, मिन जलाबी भी हिन्ना, सूरत अल अहज़ाब की आयतों में जो लफ्ज़ है जलाबीब वो इसी की जमा है, इसको समझने की जरूरत है, औरत का नमाज में लिबास क्या है, जिलबाब पहन ले, और किसी ने पूछा जिलबाब क्या है, ऐसी चादर जो सर पे रखें तो उससे पाँव की उंगलियां भी छुप जाएं, हाथ ये दोनों पहुंचो तक यानी ये रेस्ट तक जहां तक घड़ी होती है, ये हाथ और ये चेहरा नमाज में औरत को खुला रखना होता है, इसके अलावा पूरा जिस्म जो है वो छुपा होगा। अब आप और मैं अपने ऊपर लेते हैं, हमारे पाकिस्तानी और इंडियन कपड़े शलवार कमीज पे होते हैं मोस्टली आप जानते ही हैं, फिर फैशन पे डिपेंड करता है कमीजें लंबी हैं कि छोटी हैं, फिर चॉक्स लंबे हैं कि छोटे हैं, और फिर एक इंतहाई तकलीफ दे बात के नीचे खुला पजामा पहना है या टाइट्स पहनी है जो दूर से दिखती भी नहीं कि पहनी है, एवरीथिंग मेक अ डिफरेंस, औरत की नमाज नहीं होगी। मैं ये इश्यू पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगी क्योंकि आपकी नमाज का मसला है, मैं क्यों बुरी बनूं, मैं क्यों कहूँ आपको बुरा लगता है, जो भी है हम इस वक्त ड्रेस कोड पे बात नहीं कर रहे, पर्दे पे बात नहीं कर रहे, औरत औरतों में क्या पहन सकती क्या नहीं पहन सकती इसकी बात नहीं कर रही, लेकिन नमाज पढ़ने से पहले और ख़ास तौर पे माजरत के साथ गर्मियों की नमाजें, मुझे तो नहीं यकीन कि हम देसी लोगों की पूरी नमाजें ऊपर जाती होंगी, सी थ्रू कपड़े आज यहां भी अगर आप बैठकर उस तरह बैठकर किसी सिस्टर को यहां चलते देखें भाई रोशनी हो तो पूरी टांग दिखती है। मैं इसीलिए लाइट कलर के ट्राउजर और पजामे और शलवार में कभी कंफर्टेबल नहीं हुई, मुझे पसंद ही नहीं है, क्योंकि एक तो व्हाइट कलर मर्दों के लिए, दूसरा जो अब ट्रेंड चला हुआ है क्या करें फिर, लाइट स्किन ऑफ व्हाइट लाइट कलर्स के, तो मोटा बनाइए और खुला बनाइए। मैं खुद देखती हूँ, जहरा की नजर पड़ती है जहां भी सिस्टर्स बैठी होती हैं, आजकल गर्मियों की वजह से पर्दे हटे होते हैं, आते जाते उनकी टांगे दिखती हैं। और दूसरी बात यह है कि जो शर्ट्स हैं वो बहुत छोटी हैं आजकल भी, बाजू खुले हुए हैं। फिर आप देखिए कि दुपट्टे भी जो हमारे कल्चर में लोग नमाज के लिए अमूमन बनाते हैं वो चिकन के होते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड, जिसमें होल्स तक होते हैं। और आज के पजामे अल्लाह रहम करे जिसमें आधा आधा एक एक बालिश तो नीचे और गंजा लगा हुआ है और सुराख हुए में, नमाज नहीं होती, सीधी सी बातें नहीं होती, मैं क्या कहूँ, क्योंकि ये जो नमाज का लिबास लिखा है ये मुझे रोक रहा है, मुझे बात करनी, क्या करें। अव्वल तो ऐसे कपड़े पहनते से पहले एक दफ़ा बंदा सर से पांव तक खुद को देखे कि क्या ये लिबास के तकाजे भी पूरे कर रहा है, घर के बेटे बाप भाई अपने महरम रिश्तों में भी ये पहनने चाहिए, औरत को भी औरत में कशिश महसूस हो जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ऐसा ड्रेस पहनना ही नहीं चाहिए जिसमें नमाज ना हो, ठीक है। दूसरी बात कि आप नमाज से पहले सर पे दुपट्टा लेते हैं ना, और हमारे कल्चर में अमूमन देखिए एक बड़े मखसूस अंदाज से लपेट के लेते हैं, कल्चर है, तो जब सर पे जो लेते हैं तो आप पूरा एक सर से पांव तक, जैसे आप देखिए मिस्री हिजाब जिलबाब नमाज के दुपट्टे के तौर पे वो यूज करते हैं, कि सर पे बांधे ना तो पूरा जिस्म उसमें छुपता है, बहुत प्यारा लगता है, इजी गोइंग कंफर्टेबल है, तो कोई ऐसा खुला सा झबला सा झोला सा सी ले कि जब आप नमाज के लिए दुपट्टा जो ले तो साथ वो भी पहन ले। और पाँव आप देखिए, अब ये चीज हमारे कल्चर में नहीं, और ये मैंने खुद भी हदीस पढ़ने के बाद शुरू की थी बात, नमाज में ये आप समझिए ये हाथ नहीं है ये पाँव है, ये नीचे तलवा ना, इट्स ओके। हुक्म क्या है कि औरत का पाँव छुपे, बास कहते हैं कि उसकी खातिर के ये टखने, ये भी सुन लीजिए आज के पजामों में टखने खुलते हैं, पक्की बात है, सीधे खड़े हैं तो फिर भी सीधे हैं, आप रुकू के बाद सजदे में जाती हैं टखने खुलते हैं, तो या खुद में तो पता नहीं कितनी मुश्किल से बैठा जाता है ऐसे पजामों में, तो उसमें जरा सा टखना खुल गया नमाज चली जाएगी, आपके बाल दिख रहे हैं नमाज चली जाएगी, आपका दुपट्टा सिरकने वाला है जैसे चाइना सिल्क के दुपट्टे, नमाज नहीं होगी। आप सजदे में जाते हैं वो भी साथ ही सजदे में उलट के पड़ा होता है, एक औरत नमाज पढ़ रही थी सजदे में की बात में से दुपट्टा किधर गया, वो सजदे से उठी दुपट्टा परे पड़ा हुआ था, बिलीव मी ये आज के इश्यूज हैं, ठीक है आपको अल्लाह मना नहीं करता, आराइश से जिबाइश से अच्छे लगी अच्छे कपड़े पहनिए, लेकिन नमाज में आप खुद ही इतने कॉन्शियस हैं तो खुशू कहां से होगा। और इस पे एक लेक्चर है जन्नत के बारिश, मुझे याद आ रहा है सीडी बनी थी उसका लेक्चर वेबसाइट पे मौजूद है, उसमें खुशू हासिल करने के तरीके, क्योंकि अल्लाह ताला ने कदफ लहल मोमिनून अल्लज़ीनहुम फी सलातिम खाशियून, पहली सिफत खुशू रखी, हमारा खुशू कहाँ रहेगा, ऐसे कपड़ों में खुशू नहीं होता, जान पड़िए। और बाद लोग छोटी टी शर्ट्स में नमाज पढ़ते हैं घर में, अब चूंकि वो पहन के फिर रहे हैं सजदे में गए और क्या रुकू में गए, पीछे से इतनी बैग खुल जाती, नमाज नहीं होती, तो नमाज खेल नहीं है। और बालिग औरत ओढ़नी के बगैर नमाज नहीं पढ़ सकती, अल्लाह के नबी सल्लम की बहुत ही प्यारी हदीस मुझे इधर याद आ जाती है जब भी मैं ये इशू पढ़ती और पढ़ाती हूँ, और वो क्या है कि मुहाजिरात जो अल्लाह के नबी सल्लम के साथ हिजरत करके आई थी, उन्होंने एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लम से फरमाया कि अल्लाह के नबी आप हमेशा अंसार की औरतों की तारीफ करते हैं और हम खवातीन तो आपके साथ आई और हमने आपके साथ हिजरत की इतना कुछ किया, लेकिन जब तारीफ करते हैं तो आप ज्यादा लगता है कि आप अंसारी औरतों की करते हैं, तो उस पे फिर आपने फरमाया कि आयशा मैं उन औरतों की तारीफ क्यों ना करूं कि रात को इशा की नमाज के बाद हिजाब की आयतें उतरी, जिलबाब की आयतें, ये हजरत जैनब के वलीमे पे उतरी थी आयात, कि रात को मर्दों ने मस्जिद में अल्लाह के नबी से बात सुनी कि अपनी औरतों के लिए क्या करो, युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन, कि उनसे बोल दो कि अपने ऊपर चादरें डाल लें। अगले दिन फजर, जरा सा सोचिएगा, रात के बाद फजर, मा मिन हुन्ना इमरातिन इल्ला कामत मिर्तेहा, कोई एक औरत भी ऐसी नहीं थी मस्जिद में फजर की नमाज पे कि जिसने अपने आप को जिलबाब में ना समेटा हो, रातों रात उन्होंने घर के कपड़ों को चादरों में बदला और सुबह वो ओढ़नियां लेकर आई। हम होते रावी सेंटर जाएंगे, कपड़ा खरीदेंगे, टेलर की मिनतें करेंगे, फिर अबाया सिलाएंगे, फिर निकाब लेंगे, मिलता ही नहीं है ही नहीं, करें क्या। उन्होंने रातों रात चादरों में अपने आप को उसको थोड़ी बहुत चेंज किया और जो भी कैफियत थी उसमें आ गई। कहा वैसी औरतों की बात क्यों ना करूं जो अल्लाह और उसके रसूल की बात को सुनकर मानने में इतनी अच्छी थी। मेरे आपके लिए पैगाम है, बहुत सारी बातें इधर ही रह जाएंगी। आज आप देखिए कि माशाल्लाह बहुत सारी चीजें इस कोरोना वायरस के जरिए लोगों ने मान ली। कोरोना बड़ा है कि अल्लाह बड़ा है? अल्लाह बड़ा है। किसी ने कहा नहीं मैंने कोरोना से पहले निकाब कर लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह बच गए। तो इस वक्त तो बहुत सारी चीजें हो रही है ना, तो अल्लाह के हुक्म का मजाक नहीं है। डोंट टेक इट नॉन सीरियसली, ये बहुत सीरियस इशू है। इसके ऊपर इंसान को हमेशा कोशिश भी करनी है और इसकी फिक्र भी करनी है, ठीक है। फिर इसके बाद एक आध चीज ये है कि थाइस नहीं खुलनी चाहिए, और वो बात तो सिंपल हो ही गई, यानी ड्रेस कोड सिंपल है, सर से पांव तक, चेहरे और हाथ के सिवा हर चीज को छुपाना है। अब पांव छुपाने का इश्यू हमारे कल्चर में बिल्कुल नहीं है, क्या करें, सॉक्स पहन लें, इजी है। दुपट्टा जो स्पेशल लिया तो एक सॉक्स का जोड़ा भी रख लीजिए, जहां भी नमाज पढ़नी होती है सॉक्स नमाज के वक्त पहन लें, बाद में उतार दें, ये भी इजी हल है। लंबा सा अबाया पहनिए जिसमें आपके पांव पूरे छुप जाएं, ये भी ठीक है। अगर आपका ट्राउजर, आपकी शलवार खुली लंबी इतनी है उसमें पांव छुपा लीजिए, यानी हर मुमकिन कोशिश कीजिए कि वे बेहतरीन तरीके से नमाज अदा हो। फिर आप देखिए कि ये जो आपने कहा कि जूते पहन के भी नमाज हो जाती है, आपने वजाहत तो सुनी ली है, ये तो सिर्फ आपको एक रिकैप करवा रही हूँ ताकि आप इन चीज़ों को ब्लेंड कर सकें। और फिर इसी तरह से आप देखिए कि नजासत अगर जूते में लगी है, अब आपके बच्चे खेलने गए, फुटबॉल खेलने गए, घर से वजू करें, सॉक्स पहन के, जूते पहने, अब बाहर चले गए, अब हो सकता है गीली जगह है, कुछ है, नमाज का वक्त आया, जूते उतारें तो पढ़ें कैसे, जूते चोरी हो जूतों में पढ़ लें। अब इसका ये नहीं मतलब कि मस्जिदों में कालीन पे भी आप जूते लेकर आए कि हमने हदीस पढ़ ली कि जूते से होती है, नहीं, यानी जहां जूता उतारना मुमकिन ना हो और उस जूते के अंदर कोई गंदगी ना लगी हो तो जूते में भी नमाज हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। फिर आप देखिए ये जो हजरत आयशा के घर में एक पर्दा लटका था और उसमें नजर चली गई तो आपने उतरवा दी। हमारे खूबसूरत शेंगलेर्स और डेकोरेशन पीसेस सब जगह रख लीजिए, जहां नमाज पढ़े कोशिश करें कि उसके सामने की जगह बिल्कुल खाली हो। तो लिहाजा इन छोटी छोटी चीजों को रखिए। अच्छा, अमल की बातों में एक नुक्ता, मुसल्ले, खूबसूरत से मुसल्ले, तवज्जो खींचने वाले, पसंदीदा नहीं है। हज उमरे पे जाते हैं, जाइए, ये सिर्फ मुसल्ला लेकर आना। और हमारे कल्चर में ये जो एक रिवाज है ना कि मुसल्ला दे दो किसी को और उस पर साथ पाबंद भी करो कि आपने इसी पे नमाज पढ़नी है और फिर हमारे लिए दुआ करनी है, भाई मुझे आपका मुसल्ला नहीं चाहिए, इतनी जिम्मेदारियां, और पढ़नी भी खुद ही है, आपको क्या पता मेरी नमाज कैसी है, ये भी कल्चर अच्छा नहीं है। तो खास तौर पे जो आप देखिए कि 100-100, 200-200 रियाल का मुसल्ला, 1,000 रियाल का भी है मुसल्ला, और लोग जिस तरह का बंदा होता है उसके लिए उतना महंगा वाला लेकर आते हैं, वो खूबसूरत है, उनको दीवारों पे ऐसा रग लगा लीजिए, नमाज प्लेन सीधे कपड़े पे पड़ी, तवज्जो नहीं जाती। हमारे सामने कोई आए और उसने बहुत भड़कीले कपड़े पहने हो, तवज्जो जाती है ना, तो नमाज में तो देखना भी उधर ही होता है। तो लिहाजा कोशिश कीजिए खुद से कैसे जाए नमाज नाले जो हैं उनको जल्दी से खत्म कीजिए और बाकी चीजों को फिर आप डाल दीजिए।